स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 19 अक्टूबर और दिन सोमवार। नवाज शरीफ की अमेरिका यात्रा से पहले पाकिस्तान ने अमेरिका को दी नसीहत।
ऐसे वक्त में जब हमारे इंडिया पाकिस्तान से कशीदगी है तो वो कम अज कम कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक इम्बेलेंस को इस तरह ना बढ़ाएं कि वो मुल्क की इस इलाके की सालमियत के लिए खतरा बन जाए।
जाहिद की मौत के बाद अलगाववादियों ने कश्मीर बंद का दिया आह्वान। क्या सवर्ण जातियां भी किसी खास पार्टी की वोट बैंक हैं?
1990 का चुनाव हो या उसके बाद का चुनाव, जितने भी चुनाव हमने देखे, सवर्ण जाति के मतदाताओं में से लगभग 70-75% मतदाता बीजेपी के लिए गोलबंद रहे।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज अमरीका जा रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति बराक ओबामा के अलावा कई अन्य मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि इस बातचीत के दौरान मुख्य मुद्दा पाकिस्तान का राष्ट्रीय हित और सुरक्षा है। इसके अलावा भारत से संबंध, आर्थिक सहयोग और अफगानिस्तान में शांति की बहाली पर भी बात हो सकती है। स्लोवेनिया ने चेतावनी दी है कि वह अपने क्षेत्र में प्रवासियों की बढ़ती तादाद को सिर्फ तभी आने दे सकता है जब उसका उत्तरी पड़ोसी ऑस्ट्रिया भी प्रवासियों को अपने क्षेत्र में आने दे। दक्षिण में क्रोएशिया ने स्लोवेनिया से अपील की थी कि वह हर रोज कम से कम 5,000 प्रवासियों को दाखिल होने दे, क्योंकि हंगरी ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। स्लोवेनिया का कहना है कि वह सिर्फ 2,500 प्रवासियों को ही आने दे सकता है। क्रोएशिया के एक सरकारी अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि अगर ऐसे ही हर रोज प्रवासी आते रहे तो जल्द ही क्रोएशिया में जगह ही नहीं बचेगी। इसराइल के दक्षिणी शहर बीरशेवा में एक बस स्टेशन पर बंदूक और चाकू से हुए हमले में एक इसराइली व्यक्ति मारा गया है। 6 घायल हुए हैं, जिनमें 4 पुलिसकर्मी हैं। घटना के जिम्मेदार 2 हमलावरों को पुलिस ने गोली मारी, जिसमें एक हमलावर मारा गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों हमलावरों को कथित तौर पर फलस्तीनी माना जा रहा है। नेगेव बचाव सेवा के कमांडर इत्सिक अल्फासी ने बताया, केंद्रीय बस स्टेशन पर गोलीबारी हुई। मौका वारदात पर तत्काल कई एम्बुलेंस गाड़ियां पहुंची। कुल मिलाकर 7 लोगों की हमने मरहम पट्टी की। 2 हमलावरों को कब्जे में ले लिया गया है। ये थे इत्सिक अल्फासी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। शनिवार को जर्मनी के कोलोन शहर में मेयर पद की प्रत्याशी हेनरीटे रेकर पर चाकू से हमला किया गया था। उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। हेनरीटे रेकर चुनाव जीत गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन पर हमला करने वाला शख्स जर्मनी की आप्रवासी नीति से बहुत नाराज था। हेनरीटे कोलोन में आ रहे प्रवासियों के ठहरने का इंतजाम करने वाले विभाग को संभालती हैं। अमरीका और यूरोपीय संघ ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाने के लिए औपचारिक कार्यवाही शुरू कर दी है, लेकिन यह प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि तेहरान जुलाई में हुए परमाणु समझौते की शर्तों को कितनी जल्दी पूरा करता है। दुनिया की 6 बड़ी ताकतों के साथ ईरान ने जो परमाणु समझौता किया था, उसके तहत ईरान को अपनी परमाणु गतिविधियाँ सीमित करनी होंगी, तभी उस पर से प्रतिबंध हटाए जाएंगे। संवाददाताओं का कहना है कि जब तक अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं करते कि ईरान ने अपने परमाणु हथियारों को निरस्त कर दिया है, तब तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। तुर्की का कहना है कि यूरोप में शरणार्थियों के प्रवाह को कैसे कम किया जाए, इस मुद्दे पर जर्मनी से बातचीत आगे बढ़ी है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अक्टूबर की 19 तारीख और दिन सोमवार। कार्यक्रम की शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कल यानी 20 अक्टूबर से अमेरिका का दौरा शुरू कर रहे हैं। इस दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने अमेरिका से कहा है कि वो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे दक्षिण एशिया में शांति को खतरा हो। बीबीसी उर्दू सेवा के उमर आफरीदी ने सरताज अजीज से ढेर सारे मुद्दों पर बात की। उन्होंने सबसे पहले सरताज अजीज से यही पूछा कि शरीफ के अमरीकी दौरे का मुख्य एजेंडा क्या है।
अब इस वक्त जो हमारा एजेंडा है, उसमें पहला आइटम तो ये है कि जो इकोनॉमिक साइड है उसको डीपन करें, क्योंकि अब तक ये सिक्योरिटी ड्रिवन एजेंडा था, अफगानिस्तान टेररिज्म ये वो, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा हो। दूसरा जो रिलेटेड टॉपिक है वो अफगानिस्तान का है कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं उस वक्त, उसमें प्रेसिडेंट ओबामा ने बयान भी दिया था कल के अफगानिस्तान पे, नवाज शरीफ साहब को मैं होस्ट कर रहा हूँ और उस पर बात होगी कि पीस प्रोसेस को कैसे रिवाइव किया जाए, तो वो दूसरा टॉपिक होगा। उसमें जाहिर है कि अफगानिस्तान तय करना है क्या करना है, लेकिन हम उस पर कोई कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपनी पोजिशन। और तीसरा जो इशू है वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप है, उसमें हमारा बेसिक बुनियादी मौकफ यही है कि अमरीका बेशक जो ताल्लुकात करना चाहता है वो करे, लेकिन ऐसे वक्त में जब हमारे इंडिया पाकिस्तान से कशीदगी है तो वो कम अज कम कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस को इस तरह ना बढ़ाएं कि वो मुल्क की इस इलाके की सालमियत के लिए खतरा बन जाए, और उसमें जो भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन होगी। उसके बाद चौथी चीज जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन है, और बाकी जो तीन चार और छोटे मोटे मसले हैं, लेकिन ये बुनियादी एजेंडा है जो हम लेके जा रहे हैं, और उम्मीद है कि इससे हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे और इकोनॉमिक ताल्लुकात में बेहतरी आएगी।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस दौरे से कबल अमरीकी सदर ओबामा ने अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के क्याम में तौसी का ऐलान किया है, तो इस ऐलान में पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है और अमरीका किस तरह की तवक्कुआत रखता है पाकिस्तान से?
मेरा ख्याल है कि इसमें हमारा कोई ये अफगानिस्तान और उनका अपना मसला है, हम तो हमेशा से रिस्पॉन्सिबल ड्रॉडाउन कहते हैं कि वहाँ पे जब भी आप ग्राउंड सिचुएशन देख के करें, तो ये मजमू तौर पर अगर अफगानिस्तान को जरूरत है और उन्होंने किया तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा इसे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी के लिए, खासतौर पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज को ट्रेनिंग करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि वो अपना दिफा कर सकें, दैट इज आवर बेसिक इंटरेस्ट। क्योंकि अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा और बॉर्डर अनस्टेबल होगा तो हमारे लिए भी खतरा होते हैं, तो हमारा तो ज्वाइंट इंटरेस्ट यही है कि वहाँ जो भी चीज स्टेबिलिटी प्रमोट कर सके वो हमारे लिए अच्छी।
सरताजी साहब, पाकिस्तान की कोशिश है रही है कि वो अमरीका से भारत जैसा एक सिविल न्यूक्लियर ताउन का मुआहदा कर ले, मगर व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने इस बारे में कोई उम्मीद अफजा बात नहीं की, कल ही उनका बयान आया था, तो क्या इस दौरे में वजीर आजम इस मामले को उठाएंगे?
इंडिया के साथ जो किया था वो उन्होंने खास उसमें किया था और उसका कोई इतना बड़ा दरख्वा नतीजा नहीं निकला अभी तक। अमरीका इंडिया भी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर नहीं बना, मुझे उम्मीद है कि जब भी बनेंगे पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे होंगे, तो ये एक कंटिन्यूइंग चीज है मेरे ख्याल में। हमारा जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि हमारी पहली तरजीह हमारी कौमी मफाद और हमारी अपनी सिक्योरिटी है, उस पर हम कोई निशान नहीं आने देंगे, और जब तक हम उसको पूरी तरह सेफ गार्ड करेंगे, बाकी जितनी तजावीज है उन पर बातचीत होती रहेगी।
क्या पाकिस्तान चाहेगा कि अमरीका अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे भारत पर और अपना किरदार अदा करे कि मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू हो?
भारत इस पर बात होती रही है पहले भी, जब ओबामा साहब गए थे इंडिया उनकी मोदी की जो 26 जनवरी को, तो उस वक्त ये बात हुई थी कि डायलॉग के बगैर कोई चारा नहीं, और उन्होंने ये बात कही है, हमें पता है कि जी डायलॉग होना चाहिए दोनों के दरमियान, तो वो एक ऐसी चीज है जो कि एक कंटिन्यूइंग टॉपिक है। और जाहिर है कि ये सिर्फ अमरीका नहीं, बाकी भी ममालिक जो है उनको तशवीश है कि जब दो ममालिक के दरमियान मसाइल हों तो बातचीत के जरिए ठीक हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि बुनियादी चीज ये है कि इम्बैलेंस जो है इस खत्ते में ना बढ़े, और जो हमारे यहाँ आजकल सीज फायर वायलेशन हो रही है, बाकी चीजें हो रही हैं, वो ठीक हों, तो ये एक जामे टॉपिक है और उसके बहुत से डायमेंशन।
तो पाकिस्तान से ये थे विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज। और अब बात एक दूसरी खबर की। पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रसेल्स में बैठक के दौरान फैसला किया था कि वे तुर्की को प्रवासी संकट में मदद करने के बदले 3 अरब यूरो की आर्थिक मदद देंगे। तुर्की इस मदद के साथ और भी शर्तें रख रहा है, और प्रवासी संकट से बोझिल यूरोप इन शर्तों को शायद मानने के लिए तैयार भी है। बीबीसी संवाददाताओं से मिली रिपोर्टों का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल पर प्रवासी संकट से जल्द निपटने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। पहले जो नागरिक प्रवासियों का स्वागत कर रहे थे, वही प्रवासियों के लगातार आने से असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ड्रेसडन में इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकर्ता जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जब यूरोपीय संघ के नेताओं ने तुर्की को प्रवासी संकट में मदद करने के लिए एक भारी आर्थिक मदद घोषित की, तो तुर्की ने अधिक उत्साह नहीं दिखाया था। वजह साफ थी, तुर्की मदद के साथ यूरोपीय संघ की सदस्यता भी चाहता है। प्रवासी संकट पर बात करने के लिए जर्मनी की चांसलर तुर्की के दौरे पर थीं, जहां उन्होंने माना कि यूरोप अपनी बाहरी सीमाओं की रक्षा अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए तुर्की की मदद जरूरी है। यूरोप चाहता है कि तुर्की सीमा पर ही प्रवासियों को यूरोप आने से रोके और इस बोझ को साझा करे। इस पर तुर्की ने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी। अब तक चांसलर मर्केल तुर्की के यूरोपीय संघ का हिस्सा बनने पर सहमत नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने माना कि तुर्की और जर्मनी प्रवासी संकट पर मिलकर काम करेंगे और जर्मनी वीजा आदि औपचारिकताओं में तुर्की को काफी छूट भी देगा। चांसलर मर्केल:
Aus all diesen gemeinsamen Herausforderungen gibt es gute Gründe, dass
तुर्की की सदस्यता की प्रक्रिया को अधिक सक्रिय बनाने, वीजा से आज़ादी और गैर कानूनी प्रवासियों को लौटाने पर समझौते की तरफ यूरोपीय संघ और तुर्की मिलकर काम करने को राजी हो गए हैं। इसकी ठोस वजहें हैं। ये बातचीत बहुत आशाजनक रही और यह अभी जारी रहेगी। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन से अपील की है कि वे यूरोपीय संघ में तुर्की की सदस्यता का समर्थन करें। जर्मन चांसलर से अपनी बातचीत के बारे में उन्होंने कहा: यूरोपीय संघ में तुर्की के शामिल होने की प्रक्रिया पर हमारी बात हुई। मैंने उनके साथ ही फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन से भी कहा कि यूरोपीय संघ में तुर्की की सदस्यता पर अपना समर्थन दें। राष्ट्रपति एर्दोगान के शब्द। उधर इस पूरे मामले के दूसरे पक्ष को तुर्की के विपक्षी दल बखूबी समझ रहे हैं। एक तरह से ये कहना ठीक भी है कि प्रवासियों को बेरोक टोक तुर्की से यूरोप की तरफ जाने देने की वजह से ही यूरोप पर इतना दबाव बना कि उसे तुर्की की मदद मांगनी पड़े। तुर्की के सबसे बड़े कुर्द समर्थक विपक्षी दल HDP के नेता सलाहत्तीन देमिरतश ने कहा: ऐसा लगता है कि यूरोपीय संघ के देशों पर दबाव डालने के लिए सरकार ने प्रवासियों को यहाँ से यूरोप जाने दिया। तुर्की की सरकार ने ये जानबूझकर किया है। फिलहाल यूरोपीय संघ इस दबाव के सामने झुक गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मुद्दा यूरोपीय संघ की तुर्की की तरफ दीर्घकालिक नीतियों पर कितना असर डालेगा। सलातीन देमिरतश के शब्द। प्रवासियों की समस्या को शायद यूरोपीय देश सही तरह से आंक नहीं पाए, और अब लगता है कि मुमकिन है कि इस समस्या के चलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में जबरदस्त बदलाव आ जाए और अब तक पड़ोसी होकर भी बेगाना बना तुर्की यूरोपीय संघ का हिस्सा बन जाए।
तो ये थी प्रगति सक्सेना।
दुनिया की बड़ी खबरें BBC के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए TV पर BBC दुनिया, ETV नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, ये है BBC दुनिया, मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं।
उससे बात करने में बहुत मजा आता है,
तो देखना मत भूलिए BBC दुनिया शाम 9:20 पर ETV के साथ साथ bbchindi.com और BBC हिंदी के YouTube चैनल पर भी। BBC दुनिया।
तो देखना ना बोले ना भूलें BBC दुनिया। और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों ने 24 वर्षीय जाहिद की मौत के बाद आज बंद का आह्वान किया है। जाहिद अहमद की मौत कल यानी रविवार को सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हो गई थी। वो 9 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक ट्रक पर पेट्रोल बम फेंके जाने से झुलस गए थे। एक रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में आज अलगाववादी संगठनों, ट्रांसपोर्टरों और कारोबारी संगठनों ने 24 वर्षीय जाहिद की मौत के खिलाफ कश्मीर बंद का आह्वान किया है। जाहिद की मौत की खबर फैलने के साथ ही कल रात अनंतनाग और कुलगाम में सुरक्षा बलों और युवाओं के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। जाहिद अनंतनाग के बट्योंगू इलाके के रहने वाले थे। जाहिद की मौत इतवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई, जहां उनका इलाज चल रहा था। जाहिद 9 अक्टूबर 2015 को उस वक्त बुरी तरह झुलस गए थे जब वो जम्मू से दूर 80 किलोमीटर उधमपुर में अपने ट्रक में सोए हुए थे, जिस दौरान कुछ लोगों ने उनके ट्रक के अंदर पेट्रोल बम फेंका, जिससे वो और ट्रक में सोए दो और लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। जाहिद की मौत के बाद कश्मीर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जाहिद के ट्रक पर हमला उस वक्त हुआ था जब उधमपुर में 3 गायों को मुर्दा हालत में पाया गया था, जिसके बाद पूरे इलाके में प्रदर्शन हुए थे। अहम प्रशासन ने अगले दिन इस बात को साफ किया था कि गायों की मौत खुद ही हुई थी, न कि किसी ने उनको जानबूझकर मारा था। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जाहिद की मौत के लिए बीजेपी और उसकी सहयोगी जमातों को सीधे तौर जिम्मेदार ठहराया है। उमर ने ट्वीट कर लिखा है, गौमांस की पाबंदी के नाम पर एक और गैर जरूरी मौत, जिसके लिए बीजेपी और उससे जुड़े लोग और सहयोगी जमातें सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जाहिद की मौत को अफसोसनाक बताते हुए कहा है कि नफरत की राजनीति का शिकार एक और जिंदगी हुई है, जो पूरे मुल्क और राज्य के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं अलगावादी नेता और JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक ने BBC को बताया,
में जिस तरीके से मजहब के नाम पे इंटॉलरेंस पैदा हो रही है, उससे लगता है कि हिंदुस्तान फासिज्म की तरफ जा रहा है।
निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना के लिए पूरे कश्मीर से माफी मांगनी चाहिए। उधमपुर घटना में शामिल 5 आरोपियों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। उधमपुर के डिप्टी कलेक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने BBC को बताया, जाहिद की मौत को लेकर फिलहाल कश्मीर में लोग काफी ज्यादा सदमे में हैं। माजिद जहांगीर, BBC हिंदी, श्रीनगर।
और अब चलते हैं बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव पर BBC की विशेष सीरीज बूझिए न बिहार को में आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सवर्ण जातियां भी किसी खास पार्टी की वोट बैंक है, यानी क्या वो भी अपनी जाति की प्राथमिकता के आधार पर ही वोट डालती हैं। तो आप भी सुनिए।
बूझिए ना बिहार को CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार से आज का सवाल,
क्या सवर्ण जातियां भी अपनी जाति की प्राथमिकता के आधार पर ही वोट डालती हैं या फिर मुद्दों के आधार पर वोट डालती हैं?
ये बड़ी अचंभित करने की बात है। जब भी जाति के आधार पर वोट डालने की बात होती है तो इसका सारा आरोप OBC और दलित मतदाताओं पे लगता है। लोग ऐसा समझते हैं कि सिर्फ दलित और OBC मतदाता ही जाति के आधार पर वोट डालने का निर्णय लेते हैं और जो सवर्ण जाति के मतदाता हैं वो मुद्दों के आधार पर वोट डालते हैं। लेकिन मुझे लगता है आंकड़ों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये सही नहीं है।
तो फिर आंकड़े क्या कहते हैं?
आंकड़ों के आधार पर देखें तो आंकड़े स्पष्ट बताते हैं जिस तरह से दलित मतदाता किसी खास पार्टी के लिए गोलबंद होते हैं, जिस तरह से OBC मतदाता या OBC में अलग अलग जाति के मतदाता अलग अलग पार्टियों के लिए गोलबंद होते हैं, बिहार के चुनाव में भी कम से कम 90 के दशक के बाद पिछले 25-30 सालों में सवर्ण जाति के मतदाता भी किसी एक पार्टी के पीछे गोलबंद होते हुए दिखाई पड़े। 1990 का चुनाव हो या उसके बाद का चुनाव, जितने भी चुनाव हमने देखे सभी चुनाव में सवर्ण जाति के मतदाताओं में से लगभग 70-75% मतदाता BJP के लिए गोलबंद रहे। 2014 के चुनाव में तो ये सारे रिकॉर्ड टूट गए और लगभग 90% सवर्ण जाति के मतदाताओं ने एकजुट होकर BJP के लिए वोट किया। जिस तरह के आंकड़े अभी नजर आ रहे हैं सर्वे के आधार पे, ऐसा लगता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में भी अपर कास्ट सवर्ण जातियों का वोटर जिस तरह से गोलबंद BJP के लिए होता दिखाई पड़ रहा है, शायद ही कभी किसी चुनाव में सवर्ण जाति के मतदाता इतना गोलबंद किसी पार्टी के लिए हुए होंगे।
बूझिए ना बिहार को।
और अब बात उनकी जिन पर रहेगी आज हम सबकी नजरें।
भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना होंगी। अपनी 3 दिवसीय यात्रा में विदेश मंत्री ऊर्जा और व्यापार के अलावा रणनीतिक मुद्दों पर भी रूस से बातचीत करेंगी। BCCI के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत में ही खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का चयन आज दिल्ली में होगा। कार निर्माता कंपनी फिएट अपनी नई कार स्पोर्टी अबार्थ पंटो इवो आज भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। फिएट का मकसद है अबार्थ को भारत में लोकप्रिय बनाना। बाजार में इसका मुकाबला फोक्सवैगन पोलो GT से होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लंदन पहुंच रहे हैं। चार दिवसीय यात्रा के दौरान वे ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से खासकर व्यापार संबंधी मुद्दों पर बात करेंगे। वे लंदन में चीन के राजदूत से भी मिलेंगे। चीन के राष्ट्रपति को उम्मीद है कि उनकी ब्रिटेन यात्रा से दोनों देशों के बीच एक सुनहरे युग की शुरुआत होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन चरमपंथ विरोधी रणनीति की शुरुआत करेंगे। इस योजना का लक्ष्य है युवा ब्रितानी नागरिकों को सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट का सदस्य बनने से रोकना। मिस्र में दो चरणों में हो रहे संसदीय चुनावों का दूसरा और आखिरी चरण आज समाप्त होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस चुनाव में राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी की सरकार को ही वर्चस्व मिलेगा।
और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और हमारी सहयोगी प्रगति सक्सेना तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी प्रगति, बताएं।
जी इकबाल साहब, आज जो सभी अखबारों में खबरें पहले पन्ने पर हैं वो मैं पहले बता देती हूँ। एक तो दादरी बीफ मामले पर बयान से मोदी नाराज़, अमित शाह ने किया तलब, बयानवीरों को फटकार। ऐसा सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने बीफ मामले में, दादरी मामले में जो बयान दिए थे, साक्षी महाराज हुए, महेश शर्मा, संगीत सोम, मनोहर लाल खट्टर, इन सबको सूत्रों के मुताबिक अमित शाह
बाहर निकल के तो इन लोगों ने कुछ और ही कुछ कहा। जी
उधर कांग्रेस में बदलाव की तैयारी है, बूढ़े नेताओं को विदा करेंगे राहुल, जयराम रमेश ने ऐसे संकेत दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत तीसरा एक दिवसीय मैच हार गया है, मुनव्वर राणा ने लाइव शो में लौटाए अवार्ड और ₹1,00,000।
जाने माने उर्दू शायर मुनव्वर राणा की बात कर रहे हैं।
दो नाबालिगों ने किया था 2.5 वर्षीय बच्ची का रेप, पुलिस ने बताया, आरोपियों ने गुनाह कबूला। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि जब तक पुलिस नियंत्रण में नहीं आती है वो पीएम को चैन से नहीं सोने देंगे। और NJAC जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसको ठुकरा चुके सुप्रीम कोर्ट पर बरसे अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मूल भावना जो है वो उसको नज़रअंदाज किया गया है। बीफ के शक के शिकार की मौत हो गई उधमपुर में जिजाहिद की, और उससे घाटी में हिंसा और तनाव हो गया है। इसके अलावा नई दुनिया में खबर है कि राजकोट में किसान बनकर पहुंचे हार्दिक हिरासत में, स्टेडियम से 1 किलोमीटर ही पहले ही उनको हिरासत में ले लिया गया। दैनिक जागरण में खबर है कि अमरीका टालना चाहता था अग्नि का परीक्षण, ये पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की किताब से ये जाहिर हुआ है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग ने राजधानी के 2 अस्पतालों को किया बेनकाब, कागजी प्रसव से करते थे लाखों के वारे न्यारे, ये भी दैनिक जागरण में खबर है।
जी बहुत शुक्रिया प्रगति आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब बात खेल समाचार की। कल गुजरात के राजकोट में खेले गए तीसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 18 रनों से हरा दिया। जीत के लिए भारत को 271 रन चाहिए थे, लेकिन 50 ओवरों में भारतीय टीम 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 252 रन ही बना पाई। मैच के बाद हमारे साथी आदेश कुमार गुप्त ने बात की जाने माने खेल समीक्षक मलय नीरव से और पूछा कि आखिर भारत की हार की क्या वजह रही।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हार रही है, क्योंकि जो बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन किया गया और 6ठे स्थान पर भेजा गया जब अजिंक्य रहाणे को, तो जब रनों की जरूरत थी तो रन बटोरने वाले स्ट्रोक प्लेयर वहां नहीं थे, और यही कारण था कि भारत ने अंतिम जो 7 ओवर थे उसमें जो टारगेट था, अचीवेबल टारगेट था, 70 रन बनाने थे जीतने के लिए, और वो नहीं बना पाया भारत। तो अगर आपके पास 6 विकेट बचे हुए हों और अंत में 70 रन बनाने हों और आप नहीं बना पाते, तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही।
अब जो बाकी बचे हुए 2 मैच हैं, इस हार से भारतीय टीम के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा?
देखिए, मनोबल तो जरूर गिरता है जब इस तरह की हार होती है। हालांकि पिछले मैच में जीत के बाद ऐसा लगा था कि भारतीय टीम कुछ अपने आत्मविश्वास को दोबारा प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगी, मगर फिर एक बार वही बात देखने को मिली कि जो निर्णय हुए, खासकर बल्लेबाजी के क्रम में जो परिवर्तन हुआ, और जिस तरह से धोनी जब आउट हुए, धोनी के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि मैच ने एक नया टर्न ले लिया, वही टर्निंग पॉइंट था मैच का, वहीं से मैच भारत के हाथ से फिसलने लगा। तो मुझे लगता है कि एक बार बैठकर, अभी जब आप दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम के साथ खेल रहे हैं और आपको पता है कि बहुत ही कड़ा मुकाबला होना है, तो ऐसे में जिसको कहते हैं कि बीच मझधार में नावों को बदलने की जरूरत नहीं है, जो आपके देखे दिखाए बिल्कुल ठोके बजाए जो खिलाड़ी हैं, जिस क्रम में खेलते हैं उसी क्रम में अगर आप खेलें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास विकेट भी थे, आपके पास ओवर भी थे और आप रन नहीं बटोर पाए। कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे घबराहट सी थी उनके मन में, और फिर से एक बार देखना होगा कि क्या कारण है कि रैना जैसे खिलाड़ी जो नहीं चल पा रहे हैं, तीनों इनिंग्स अगर आप उनके देखें जो अब तक उन्होंने खेले हैं तो कोई रन नहीं बने उनसे, तो ऐसा क्या हो गया है रैना को, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से इमरान ताहिर ने उन्हें मिलर द्वारा कैच करा के आउट किया, तो मुझे लग रहा था कि रैना को काफी अभ्यास की जरूरत है, उनको कोच को उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप में वो ताकत है, मादा है, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं शॉर्ट फॉर्मेट के, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर वो नहीं चल पाए और अंत में वही स्थिति हो गई, तू चल मैं आयन, और उसमें दिक्कत हो गई।
बचे हुए वनडे और टेस्ट मैच के लिए टीम का चयन होगा, क्या कुछ बदलाव आपको नजर आते हैं?
जिस तरह से अभी टीम है उस टीम में मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा फेर बदल की कोई जरूरत है। हाँ ठीक है कि आपके पास रिजर्व में बॉलर्स हैं, मोहित शर्मा हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, अमित मिश्रा हैं, कुछ आप फेर बदल उन्हीं के बीच कर सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि टीम में बहुत ज्यादा परिवर्तन की कोई गुंजाइश है।
तो ये थे मलय नीरव और खेल की कुछ और खबरों के साथ एक दफा फिर आदेश कुमार गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर मेहमान दक्षिण अफ्रीका ने कल राजकोट में खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 18 रन से मात दी। भारत के सामने जीत के लिए 271 रनों का लक्ष्य था, लेकिन भारत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 252 रन ही बना सका। हालांकि नंबर 3 पर खेलते हुए विराट कोहली ने लंबे समय बाद 77 रनों की पारी खेली, लेकिन 99 गेंदों पर खेली गई इस पारी को वो तेज गति में नहीं बदल सके। पिछले दो मैचों में लगातार अर्धशतक जमाने वाले अजिंक्य रहाणे को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नंबर 6 पर भेजा, वो केवल 4 रन बना सके तो सुरेश रैना का खाता तक नहीं खुला। खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नंबर 4 पर आकर 47 रन बनाने में कामयाब रहे, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने 61 गेंदों का सहारा लिया। इसके बाद लगातार रन रेट बढ़ता चला गया, जिसका खामियाजा भारत ने भुगता। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी 74 गेंदों पर 65 रन बनाए, जबकि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डिकॉक के 103 और फाफ डु प्लेसिस के 60 रन की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 270 रन बनाए। भारत के लिए मोहित शर्मा ने 62 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 5 मैचों की मौजूदा सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच चौथा एक दिवसीय मैच 22 तारीख को खेला जाएगा। उधर डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की पीवी सिंधु चीनी दीवार नहीं तोड़ सकी और जुइरू ली से हार गई। चीन की जुइरू ली ने गैर वरीयता हासिल पीवी सिंधु को 21-19 21-12 से हराया। ली ने फाइनल मुकाबला 47 मिनट में अपने नाम किया। वहीं शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने फ्रांस के जो विल्फ्रिड सोंगा को 6-2 6-4 से मात दी।
और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज अमरीका जा रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति बराक ओबामा के अलावा कई अन्य मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने बीबीसी को बताया कि इस बातचीत के दौरान मुख्य मुद्दा पाकिस्तान का राष्ट्रीय हित और सुरक्षा है। स्लोवेनिया ने चेतावनी दी है कि वह अपने क्षेत्र में प्रवासियों की बढ़ती तादाद को सिर्फ तभी आने दे सकता है जब उसका उत्तरी पड़ोसी ऑस्ट्रिया भी प्रवासियों को अपने क्षेत्र में आने दे। इसराइल के दक्षिणी शहर बीरशेवा में एक बस स्टेशन पर बंदूक और चाकू से हुए हमले में एक इसराइली व्यक्ति मारा गया है और 6 घायल हुए हैं। शनिवार को जर्मनी के कोलोन शहर में मेयर पद की प्रत्याशी हेनरीटे रेकर पर चाकू से हमला किया गया था, उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। हेनरीटे रेकर चुनाव जीत गई हैं। अमरीका और यूरोपीय संघ ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाने के लिए औपचारिक कार्यवाही शुरू कर दी है। तुर्की का कहना है कि यूरोप में शरणार्थियों के प्रवाह को कैसे कम किया जाए, इस मुद्दे पर जर्मनी से बातचीत आगे बढ़ी है। इस्तांबुल में जर्मन चांसलर मर्केल से मिलने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश इस मुद्दे पर साथ काम करने पर राजी हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में, और इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।